मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमा फऔआ इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ इज़ा मस्सहुश शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ। सूरह मारिज की इन आयात पर दरस चल रहा था। अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह मारिज में बयान ये चल रहा था कि भाई कयामत कब आएगी। ये क्या अभी मैंने कहा शायद कह रहे हैं बटन बंद कर लो। चलो इस बहाने बटन भी बंद हो गया। तो अल्लाह मियां ने क्या फरमाया कि भाई इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। जब अल्लाह ताला चाहेगा वाकई कर देगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में है ये, कब उसका टाइम मुतय्यन है। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहा लगा नज़ाअतन लिश्शवा, जब ये वाकई होगी तो जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लेकर आते, उनको थोड़ा अजाब नहीं होगा। वो जहन्नम की आग भड़कता हुआ अंगारा है, भड़कती हुई आग है। नज़ाअतन लिश्शवा, जो खाल को उधेड़ के रख देगा। तदउ मन अदबरा वतवल्ला, ये जहन्नम किसको अपनी तरफ खींचेगी? हर उस शख्स को अपनी तरफ खींचेगी जिसने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा। अदबरा का माना पुश दिखाई हमें। आप जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो उसकी तरफ चेहरा करते हैं, जब मुंह मोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं तो पुश फेर देते हैं आप। तदउ यानी पुकारेगी, ये जहन्नम बुलाएगी। बिल्कुल ऐसे है जैसे मैग्नेट की खासियत होती है लोहे को अपनी तरफ खींचना। प्लास्टिक रख दें, चिपकाने की भी कोशिश करें तो नहीं चिपकता। बिल्कुल यही कुरान का अंदाज है कि जहन्नम जो है ना खींचेगी किन लोगों को अपनी तरफ, जिनके अंदर ये बुराइयां होंगी। पहली बुराई मन अदबरा वतवल्ला, जो अल्लाह के हकाम सुन के पुश दिखाएगा, पीठ दिखाएगा। वतवल्ला और मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा। आज जितने भी नाफरमान लोग हैं ना, ये सिर्फ नाफरमान नहीं है, ये इसकी कोशिश भी नहीं करते कि हमें किसी तरह तौबा की तौफीक मिल जाए। ये उस पर मुतमईन है। आज मैंने किसी के कमेंट्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तानी लोग जो है ना, बस उनको जिंदगी भर जो है वो कमाने की फिक्र होती है, फिर 40 साल तक जो है, फिर वो बच्चे होते हैं उनके, फिर उनकी बच्चों की फिक्र होती है, फिर 60-70 साल के बाद आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं, इसी में इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। यानी उसने आखिरत की फिक्र को कितना हल्का लेके बयान किया है कि पाकिस्तानी कौम जो है शुरू में पढ़ाई की फिक्रों में टाइम गुजरता है इनका, फिर शादी ब्याह की फिक्रों में गुजरता है, फिर बच्चों की शादियों की फिक्रों में गुजरता है, फिर उसके बाद ये उसने लिखा था कि यानी सेहत की तो फिक्र होती नहीं है, बस ये चंद मखसूस फिक्रें हैं। लिहाजा उम्र जो है ना इनकी बड़ी छोटी हो गई है, 60-70 साल में मरमरा जाते हैं, और गोरा 80-90-100 साल जी रहा है, तो रिटायरमेंट की उम्रें बढ़ा दी उन लोगों ने, सेहत का तो है ही नहीं। तो भाई तू सिर्फ इतना कह दे कि सेहत की तो फिक्र ही नहीं करते, पहले पढ़ाई की फिक्र में लगते हैं, कमाने की फिक्र में लगते हैं, बच्चे पैदा करने की फिक्र में लगते हैं, और फिर जो है वो रिटायरमेंट के बाद घर में पड़े पड़े कोई काम नहीं होता, ये कह दो आप। ये आखिर में ये तड़का लगाने की क्या जरूरत है कि भाई फिर 40-50 साल के बाद आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई हज कर रहा होता है ना लोग रिटायरमेंट के बाद, चलो यार अब हज करके आ जाओ, चलो थोड़ा सा तबलीग वालों के साथ बैठ जाओ। तो मैंने कहा इसने ये जुमला कहा, इसकी नजर में ये जुमला बहुत हल्का है। तो आपको पता है अल्लाह की नजर में ये जुमला बहुत भारी है, बहुत भारी जुमला है। क्या कह दिया तूने, एक मजाक में तूने इसको कह दिया कि आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन बेचारों को अपनी पैदाइश का मकसद ही उनके पेशे नजर नहीं है। वो समझ रहे हैं बेवकूफ लोग हैं, यानी अल्लाह ऐसे लोगों को अहमक तरीन लोग करार देता है। अल्लाह पता है ऐसे लोगों को क्या कहता है, अम हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। अच्छा ये जिसने ये कमेंट्स किए उसकी नजर में कारामत इंसान कौन होना चाहिए? अब यानी वो क्या चाह रहा है कि कैसा होना चाहिए? यानी वो ऐसा होना चाहिए कि शुरू में आप पढ़ाई की फिक्र में ना लगें, क्या करें भाई, फिर हम फिर उसके बाद आप शादी की फिक्र में ना लगें, फिर बच्चे पैदा करने की फिक्र में ना लगें, फिर बच्चों की फिक्र में ना लगें, और आखिर में आखिरत की फिक्र में भी ना लगें, तो क्या करें भाई फिर वो? ये लोग ना, ये वो गुलाम लोग हैं जो गैर मुस्लिमों से इतने इंस्पायर हो गए हैं, मुतासिर हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, यानी गोरे से भी चार हाथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी टेंशन लेस जिंदगी दुनिया में किसी की भी नहीं है कि फिक्रों से मुकम्मल ही आजाद हो जाएं। तभी एक बात अक्सर कही जाती है ना, वो कैसर राजा साहब ने बड़ी खानदानी बात की थी ना कि मेरे बारे में कहा कि आपने देसी मुलहिदों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है। तो कैसर राजा साहब की फील्ड है ना ये इल्हाद पे काम करना। तो ये बात वाकई मैंने मुशाहिदा किया है कि ये जो देसी मुलहिद है ना, ये गोरों के एथियस से दो हाथ आगे होते हैं। गोरा जब बात करता है ना, गोरा गोरे में जो एथियस्ट हैं वो मे बी करके बात करते हैं कि भाई हो सकता है खुदा हो सकता है ना हो, वो इतना इससे आगे नहीं बढ़ते। उनमें जो एजुकेटेड लोग हैं खास तौर पर, वो मजाक नहीं उड़ाते इस्लामी हकाम का। आप उनसे बात करें वो भक्तियां नहीं कसते। ये जो हमारे देसी लोग हैं ना, ये वो हैं जैसे किसी गरीब के पास नया नया पैसा आ जाए तो अपनी औकात भूल जाता है। तो ये समझते हैं हम एक्चुअली, जब हम खुदा का इंकार करेंगे ना, हम कहेंगे अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, मजहब गलत है, तो दुनिया हमें एजुकेटेड और पढ़ा लिखा समझेगी। लोग ये समझेंगे ये दकियानूस नहीं है कि मजहब को फॉलो करने की वो कर रहे हैं, हम बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हमारा कोई मजहब नहीं है। ये जैसे है, जैसे कोई कहता है ना हमारा कोई फिरका नहीं है, ये मुसलमानों के सेकुलर हैं जो कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है। ये नारा बड़ा अट्रैक्टिव है, हमारा कोई मजहब नहीं है, हमारा कोई फिरका नहीं है। वो शो करते हैं हम न्यूट्रल लोग हैं, पर आपको पता है इंसानी नेचर है कि वो हमेशा न्यूट्रल लोगों की बात को वैल्यू देता है। मिसाल के तौर पर मेरा झगड़ा चल रहा है इनके साथ, फड्डा मेरा इनके साथ हो रहा है, मैं दावा कर रहा हूं इसने पैसे चुराए, ये कह रहे नहीं चुराए, तो अब मेरे चचा से थोड़ी फैसला करवाएंगे क्योंकि वो तो न्यूट्रल थोड़ी है भाई, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे। इनके मामू इनको, एक ऐसा बंदा हम लेकर आएंगे जो ना इसका ना इधर का। तो यहां यही फॉर्मूला फिट करते हैं, देखो मेरा तो कोई फिरका नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूं। लोग कहते हैं बंदा न्यूट्रल है, यार ये बात करेगा तो कुरान हदीस की करेगा, इस पे ना देवबंदियत की छाप है, ना हनफियत की छाप है, ना शाफियत की छाप है, ना अहले हदीस है, ये बंदा क्या है न्यूट्रल। ये नफ्सियात से खेलने वाली बात है। अभी मैं बताता हूं ये मंजनों में गड़बड़ क्या हो रही है। इसी तरह जो एथियस्ट लोग है ना, जो देसी एथियस्ट है, जो यहां से गए और वहां जाके बहक गए क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह चढ़ियां पहनी हुई औरतें देखी नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में शराब कबाब जब वहां गए ना तो पागल हो गए, बे ये क्या है यार, ये लाइफ इट इज, ये है एंजॉयमेंट असल। तो शराब कबाब और वो उठपटांग इतना जितना गोरा भी नहीं होगा उसमें, तो बिल्कुल ही। फिर उनको ये मौलवी लोग और ये मजहब वजहब और ये मदरसे वदरसे सब क्या लगते हैं। तभी ये आपको पता है गोरों में होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बहुत सारे मुलहिद भी हैं, लेकिन देसी मुलहिद कोई आपको होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ नहीं मिलेगा। वो सारे कहते हैं सबको इस गंद में डाल दो, वो इसमें लगे हैं आगे। इल्ला जो जो मेरी मालूमात में है, ऐसा दावा मैं नहीं करता, जाहिर है पूरी दुनिया तो हमने नहीं देखी है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है कि ये देसी लोग जो है ना, देसी जो एथियस्ट होते हैं, ये उनसे भी चार हाथ आगे हैं। तो ये दावा जो लोग करते हैं ना, न्यूट्रल हैं एक्चुअली, हमारा कोई मजहब नहीं है, तो अब लोग कहते हैं यार इनकी बात का एतबार किया जाएगा। इसी तरह जो कहते हैं मेरा कोई फिरका नहीं है, लोग कहते हैं ये क्या बात करेगा, तो याद रखो जितने फिरके बने हैं ना वो इसी बेस पे बने हैं कि हमारा कोई फिरका नहीं है। न्यूट्रल होके ही तहकीक किए तो एक राय कायम हो गई, फिर जब उसमें बहुत सारे लोग आ गए तो एक मसलक बन गया। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा ने सबसे पहले तहकीक, जो मुरतब तहकीक जिसे कहते हैं, तो कोई फिरका था उनका इमाम हनीफा का, बोलो कि भाई वो फिकह हनफी को फॉलो कर रहे थे क्या? वो उन्होंने बिल्कुल कैसे किया है, न्यूट्रल होके। इदा सहल हदीस फहुआ मजहबी, मशहूर कौल है इमाम हनीफा, भाई जो भी सही हदीस है वो मेरा क्या है, मजहब है। तो उन्होंने उसूल वजह किए, उनके शागिर्दों ने फिर उस पर किताबें लिखी हैं। तो बिल्कुल न्यूट्रल होके एक तहकीक करके एक फिका को मुरतब किया। इमाम शाफी ने भी बिल्कुल न्यूट्रल होके, उसमें ये नहीं कि किसी की राय फला क्या कहते, भाई हम उनकी यही राय थी, लेकिन वो लोग इसके अहल थे, उनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म बहुत मजबूत इल्म था, उम्मत ने गवाही दी कि ये इसके अहल हैं कि न्यूट्रल होके जब ये तहकीक करें तो उस तहकीक को फॉलो किया जाए क्योंकि ये न्यूट्रल हैं। इमाम मालिक भी न्यूट्रल थे, इमाम अहमद बिन हंबल भी क्या थे, न्यूट्रल। इसमें ऐसा नहीं है कि फलां क्या कह रहा है। इमाम अबू हनीफा का मशहूर कौल है ना कि मैं सबसे पहले मसला कहां देखता हूं, कुरान में, मैं उसके बाद देखता हूं हदीसे रसूल में, फिर अस्हाबे रसूल में। अस्हाबे रसूल के बाद भी आप किसी की राय को लेते हो, कहते हैं हुम रिजाल व नहनु रिजाल। अस्हाबे रसूल के बाद अगर किसी ने कोई राय कायम की है तो भाई वो अगर साहिब राय हैं तो हम भी क्या हैं, फिर हम पर नहीं पाबंद कि हम उनको फॉलो करें। तो ये न्यूट्रल होके ही तो कर रहे हैं ना। अब आजकल के जो फिरके आ रहे हैं ना वो कहते हैं हम न्यूट्रल होके कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो ये भी न्यूट्रल होके इन्होंने तहकीक की और अबू हनीफा ने भी न्यूट्रल होके तहकीक की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ताबईन के दौर में न्यूट्रल होके तहकीक कर रहे थे उनकी तहकीक में दुरुस्तगी का इम्कान ज्यादा है ये जो आजकल के आए हुए हैं इनकी तहकीक में दुरुस्तगी का इम्कान ज्यादा है? अगर आप न्यूट्रल होने की बेस पे कर रहे हो तो वो भी तो न्यूट्रल ही थे ना, तो क्यों ना उनको फॉलो किया जाए। यहां एक मशहूर वही मंजन कि हमने ना इनको करना है ना उनको करना है, हमने कुरान और सुन्नत को करना है। तो अबे ये भी कुरान और सुन्नत का दावा कर रहा है, अबू हनीफा भी कुरान और सुन्नत का दावा कर रहे हैं, तो वही बातें जो ये कर रहे हैं वही भी करके गए हैं। एक चीज रह जाएगी, भाई हमें इनकी दलील तो हमारे सामने पहुंची है, हमें तो इनकी दलील पहुंची है। ये दलील देखो, ये तो रेफरेंस के साथ है। अबू हनीफा ने जो बातें की हैं वो तो रेफरेंसेस के साथ नहीं है, तो वो इसलिए आपको नहीं मिली कि आपने उसको प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं है। तो जो जहालत का इतराफ कर रहे हो आप, कॉमन सेंस क्या कहती है, 15वीं सदी के बंदा उसको जो है कुरान और सुन्नत का पता है, और जो फिका मुरतब करके चले गए जिस पे पूरी पूरी इस्लामी हुकूमतें चली हैं, सदियों चली हैं, खिलाफतें चली हैं, लाखों करोड़ों उलमा सोलहा पैदा हुए उसको फॉलो करते रहे, उनके पास कुरान और सुन्नत नहीं होगा? तो ये मंजन की मुख्तलिफ क्या है भाई इसमें। तो हां, अब सबने न्यूट्रल होके ही तहकीक की है, इमाम शाफी ने भी। उस न्यूट्रल होके तहकीक में बहुत से मसाइल में इत्तेफाक हो गया और कुछ मसाइल में क्या हो गया, इख्तलाफ। हम कहते हैं ये बड़े बड़े उलमा ने जब तहकीक की और फिर भी इख्तलाफ बाकी, जिन मसाइल में रह गया अब वो हल नहीं हो सकता। वजह उसकी है कि कुछ ना कुछ दोनों तरफ दलाइल हैं, जब दोनों तरफ दलाइल हैं तो इट मींस के ये हल होने वाला मसला नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हल हो रहा, किसी एक को फॉलो कर लो, दूसरे को बुरा भला मत कहो। ये लोग जिस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं ना, ये मेरा मौजू नहीं है, बस मैं अभी इसको समेट रहा हूं, आ रहा हूं दूसरी तरफ। ये जिस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं ना, ये न्यूट्रल गिरी क्यामत तक चलती रहेगी। मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या कहा कि हम तो न्यूट्रल है ना, हम हनफी हैं ना, हम शाफी हैं, हम ना अहले हदीस हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। लोगों ने कहा यार, जैसे मेरा कहीं भी बयान जाता है ना तो फौरन एक कमेंट आया होता है, भाई ये तो हनफी है, इसने क्या करना है, फिकह हनफी को सपोर्ट करना है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम जब न्यूट्रल होके कोई मसले की तहकीक सामने रखते हैं ना दलाइल की दुनिया में, तो उसमें हनफियत को साइड पे रख देते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत से लिसनर ऐसे हैं जो फिकह हनफी को फॉलो नहीं करते, उनको थोड़ी मैं दलील में हनफियत पेश करूंगा। लेकिन इन्होंने छाप बना ली है, अब मैं दलाइल कुरान और सुन्नत से दे रहा होता हूं, हदीसे रसूल से दे रहा होता हूं, इजमाए सहाबा से दे रहा होता हूं, तो वो फौरन ये क्या कर रहे हैं, हनफी हैं। حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا بھی ہوتا ہے، وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے، سب ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے۔ نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے، ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا، اب ایک سواد زواد کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے، واد اور وا ہے کہ دعا دے، اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا، ایک عالم کا بیان آیا کہ بھائی یہ دعاد ہے، دال کی طرح ہے، میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ وا کی مشابہ ہے، اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہے نا، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ وا کے مشابہ ہے، وا کے مشابہ۔ اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا، تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی، وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی۔ یاد رکھو، نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا، تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے، وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا، ایک فریق بن گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں، وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا۔ اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا، تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے فواد دواد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا، کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب تین کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کہہ رہے گا فیصلہ، کیونکہ وہ تو ایک فریق بن گئے نا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں، غلط ہیں۔ تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں، تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے، کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں، تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا، تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے، کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں، تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے، کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا، دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا، اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں، تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے، اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو۔ تو یہ جو منجن بک رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے، یہ منجن ہی غلط ہے، یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ، یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا۔ بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں، اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں، ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو، مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گاڈ کہتے ہیں، خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ نے 1,25,000 پیغمبر بھیجے، دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں، ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں، تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں، یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتاتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے، یہ سارے کیا ہیں، غلط ہے۔ تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالر مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا دیکھو یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف، حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کریٹر ہے، انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں، ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں، پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں، ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو، کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی، دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے، یہودیت کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا، یہ سب ابراہیم کو، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف، یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے، اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو ایتھیس لوگ آئے، دیکھا ان کے کلپ، جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں، وہ دکھاتے، وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا، اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا، پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور ہمارے میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالر کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں نہ ہم حنفی ہیں نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں نہ اہل حدیث ہیں, ایکچولی ہم کوئی فرقے ورکے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت یہودیت مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا, تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے, اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں, بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ کلپ دیکھو یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں, یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بےچارا خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو, یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے, بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرز کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے, بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں ناک ہوتے ہیں, اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا, تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ آئے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا, ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ایسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا, فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے, پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایک ہے کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں, اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے, مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں, پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں, ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, نقل کفر کفر نباشت, اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ فری تھنکر کیا؟ اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں، صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ اب ہے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے، تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے؟ ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے پھر. تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے؟ تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، میں فری تھنکر ہوں، یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں فری تھنکر، وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا، تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو، کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو، ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو، اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو، یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا، تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے، وہ ہندو ہو جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے، لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے، تمہارے تو اتنی جنگیں، تمہاری تو، ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے. بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم حق بیان کر دیتے ہیں. بھائی یہ ٹھیک ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ولذالک خلقہم، اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں، فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا، تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے، کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا، یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام، سارے فرقے ختم ہو جائیں. تلوار کی طاقت سے ہوں گے، وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے، تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائی سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا، کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں، عدالتی خلا معتبر. جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا، اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے، کہہ رہے ٹھیک ہے کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنا چاہتی. وہ مجھے نہ ظہر کے بعد وہ اسی طرح، تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا، تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا، یعنی خلا کا مطالبہ کر لو، اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی، میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے، جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی، آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے. ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا، لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے، آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں. तो शौहर फिर सीरियस लेगा और शौहर को ये भी इत्मीनान हो जाएगा कि भाई जब अदालत इन्वॉल्व होती है तो मेरा मेहर मुझे लाजमी मिलेगा, वरना ऐसा ना मैंने इधर तलाक दी और मेहर भी लेके बीवी शॉर्ट हो जाए। तो जितने भी फिर खुला के बाद के जो मसाइल हैं, इद्दत का खर्चा, उसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगी। जब कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो भागने का रास्ता नहीं रहता, ना शौहर के लिए ना बीवी के लिए। तो मैंने कहा ये रास्ता, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता तो फिर क्या करे, सबर करे वो, क्योंकि तलाक का हक, निकाह खत्म करने का हक तो मर्द के पास है। फिर वही नहीं, जब वो नहीं रहना चाहती है, ये स्टाइल था उनका। नहीं मुफ्ती साहब, आप आज ही की बात है, जोहर के बाद, जब वो नहीं रहना चाहती है। मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दे इस्लाम को फिर। मैंने कहा मैं, आप अकल से साबित करने मेरे पर थोप रहे हो एक मसला। ये पता है क्या, एक लॉजिक पेश करते हैं, एक औरत नहीं रहना चाहती तो क्यों इस्लाम उसको मजबूर कर रहा है रहने पर। इस्लाम कह रहे ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, कि जब वो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये राइट। जब वो बहुत दफा समझा दिया ना उनको, दलाइल से नहीं आ रहा, कह रहे नहीं रहना चाहती तो इसमें फायदा क्या है। मैंने कहा भाई फिर ठीक है, आपकी अगर 6-7 बच्चे हैं ना, मुझे पता था उनके 6-7, मैंने कहा आपकी बेगम बोल रही टाटा मैं जा रही हूं, अब आप मेरे पास आओगे भाई, मैं सारी जिंदगी बेवकूफ हूं, मैं इसको इसका 10 साल से नान नफका उठा रहा हूं। देखो दुल्हन से इश्क जैसी मोहब्बत तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो जिम्मेदारी के चक्कर में पाल रहा होता है आदमी। अब है जो तुम्हें दुल्हन से पहली रात में लगाव था, क्या वो अब भी है? कोई नहीं देख रहा तुम्हें, 20-30 साल 10 साल के बाद थोड़ी होता है वो लगाव। मोहब्बत दूसरे स्टाइल में होती है, मेरे बच्चों की मां है, मेरे साथ इसने इतना टाइम गुजारा, इस लिहाज से तो होगी, वो जज्बात थोड़ी होते हैं पहली रात में, तो जो है ना, या शुरू की रातों में तो दोस्त बुरे लग रहे होते हैं, गटर के ढक्कन जिन पे सारी जिंदगी गुजार दी वो बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या ये जज्बात बाद में रहते हैं? उसके बाद जिम्मेदारियां समझ के, यार वाइफ है मेरी, जो है ना मेरे खान, मेरी, मेरे वालिद की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, और जो है क्या नाम है, एक मैं छोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा सोसाइटी में, इज्जत का, उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो 10-15 साल उसने क्या किए, घर बसाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर उसको पता होता 15 साल के बाद ये निकल जाएगी तो कहता अभी निकल जा भाई, मैं पागलों में 10 बच्चे पैदा करके, ये 6 बच्चे पैदा करके तुझे निकालूंगा यहां से। अब आप उस 6 बच्चों के बाद उसको ऑप्शन बोल रहे हो कि वो जब नहीं रहना चाहती, वो जब नहीं, वो उनका स्टाइल ही यही था। तो मैंने कहा आपकी बेगम आज बोले 6 बच्चों के बाद कि मैं जा रही हूं, आप बोलोगे कि मैं पागल हूं भाई, जब तुझे 10-15 साल से मैं पाल रहा हूं तो तू पहले चली जाती, पहले चली जाती ना तू। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बेगम को ये मसला बताएं कि बेगम कोई भी पसंद आ जाए ना तुम्हें तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तो तुम चली जाना, और जब मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम कहने जब मैं नहीं रहना चाहती तो मुझे क्यों रोक रहे, तो आप ये बोलोगे कि फिर पहले बोल देती ना मुझे। और उस अब जब अदालती खुला सोसाइटी में चलेगा ना, तो मर्द को पता है कि 10 साल के बाद भी जा सकती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं इसका नुकसान किसको होगा भाई, औरत को होगा। मर्द कहेगा जब 10 साल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है जा सकती है, आप कह सकते हो नहीं जी हमें अपनी बीवी पे बड़ा एतमाद है, बड़ी नेक है, ये 10-20 साल के बाद भी नहीं जाएगी। दुनिया में ऐसा एतमाद कि 20 साल के बाद का भी आपको पता हो कि क्या होने वाला है, ये किसी के बारे में भी नहीं, ये गारंटी सिर्फ पैगंबर की हो सकती है, ये तो ना शौहर की ऐसी हो सकती है ना बीवी की हो सकती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो सकता, तभी तो हदीस में आता है, तभी हम यकीनी जन्नती किसी को कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं ना जन्नती। वजह क्या है कि आज नेक है कल बुरा हो जाए, आज बुरा है कल क्या हो जाए, तौबा करके अच्छा हो जाए। तो ये बीवी के बारे में कैसे कह दे सकते हो कि आज ठीक है तो कभी भी खराब नहीं हो सकती, ये कैसे कह सकते हो? तो इसका नुकसान क्या होगा? मर्द कहेगा जब ये जिस दिन ये नहीं रहना चाहेगी तो क्या होगी, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इस्लाम आपके सामने बताऊंगा, आपको इस्लाम समझ में, छोड़ दो आप इस्लाम। फिर वही स्कॉलर्स आ जाते हैं आजकल, जो मिशकात की इतनी हदीसें फेंकते रहो बैठ के, कोई हदीस नहीं है मिशकात की जिसमें आ रहा है कि जब कोई नहीं रहना चाहती तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी, ऐसी कोई हदीस नहीं है मिशकात की, जज कोई इख्तियार ही नहीं है। तो खैर हम कहां जा रहे थे, तो मैंने कहा भाई जो फ्री थिंकर है ना, अब वो क्या कहता है कि देखो ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये फलाने से लड़ रहा है, ये ढिमकाने से लड़ रहा है। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि चूंकि मुल्हिदीन के अपने फड्डे चल रहे हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं उनके खुदा वालों से, और खुदा जो मानते हैं उनके आपस में, तो अब मैं न्यूट्रल होऊंगा, मेरा मैं इनमें से किसी को भी ठीक नहीं समझता। अब न्यूट्रल होके तू क्या करेगा, सारे अकीदे तो खत्म हो गए ना, जो खुदा को मानने वाले भी खत्म, खुदा का इंकार करने वाले भी, फिर जो खुदा को मानते हैं उनमें तौहीद परस भी और मुशरिक भी, फिर जो तौहीद परस का दावा करते हैं सच्ची मुच्ची में तौहीद परस हैं भी या नहीं है वो भी, फिर पैगंबरों को मानने वाले ना मानने वाले सारे खत्म हो गए, अब तू क्या करेगा। हम तो कहेंगे इन्हीं में से जो सही लगता है उसको फॉलो कर। तो कहते ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा मैं इनमें से किसी को भी ठीक बोलो नहीं मानता। अब क्या अकीदे तो सारे खत्म हो गए हैं भाई मार्केट में, तो एक नया उसने फिरका बनाया कि फ्री थिंकर। फ्री थिंकर का मतलब मैं ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह है, ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह नहीं, यानी उसका ये भी एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग को खाली रख के जिंदगी गुजारो। हालांकि ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है, ये यूं समझो कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे ये तुम्हारा बाप है, कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं या ये आपकी वालदा हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालदा हैं या नहीं है, या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी मां नहीं है, ये क्या है मेरी मां नहीं है, कोई ना कोई दलील के ताने बाने आप मिला दो, मुनाजरे शुरू हो जाएंगे आपके, डीएनए की रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो कुछ लोग आपका साथ बोलो दे देंगे, कुछ जो आपके दलाइल से मुत्तफिक होंगे, और अगर आपने मान लिया कि ये मेरी मां है तो हो सकता है कुछ मुखालफत करें और कुछ आपका साथ दे दें कि यार इसके दलाइल समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ना भाड़ में जाए मेरी मां है या नहीं, मैंने क्या करना है, इस पे कोई भी अकलमंद आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा भाई तू मां यार ये कैसे हो सकता है कि या तो तू इसको मां मान या मां नहीं मान, नहीं मानता है तो अजनबी है, मानता है तो भाई तू फिर तो इससे आम औरतों से ज्यादा इससे अच्छे सलूक से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तुझे, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप कह रहे भाड़ में जाए रिस्पेक्ट, वो देखा नहीं है जो जिनकी माएं होती हैं और जिनकी माएं नहीं होती उनके आपस में इख्तलाफात नहीं देखे, कुछ कह रहे हैं ये मेरी मां है, कुछ कह रहे हैं इनकी आपस में तो पहले हल कर लें, एक कह रहे मेरी मां है दूसरा कह रहे मेरी मां नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मुल्हिद यही कहता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं फलाना, ये आपस में तो लड़ लें, ये सब अट्रैक्शन के मंजन है। इसलिए दुनिया में मजहब बहुत सारे रहेंगे, इन बहुत सारे मजहबों में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, इन लड़ाइयों को देख के कहना सारे गलत हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला दावा है। भाई इनमें सारे गलत नहीं है, जो सही है आपने उसको क्या करना है, मानना है। क्यों वलीदाली का खलकहुम, अल्लाह कहते हैं इतने मजहब दुनिया में इसलिए रहेंगे कि मैं इनको आजमाऊंगा, मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है, जहां मूसा होगा वहां फिरौन भी होगा, फिरौन ना होता तो मूसा की क्या जरूरत थी फिर, समझते हो कि नहीं समझते। तो हक और बातिल हमेशा क्या करेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो तुमने देखना सही कौन है, क्योंकि अगर सारे खत्म हो गए तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। कमाल यही है कि तुम इतने सारे मजहबों में तुम हक को पकड़ के डटे रहे और उसकी उसको पर कायम रहने में तुमने किसी की मुखालफत की परवाह नहीं की, हर लिहाज से फिर उस हक का साथ दिया। तभी अल्लाह कहता है ये इख्तलाफ मैं कयामत के दिन हल करूंगा। तभी अल्लाह ताला जहां भी नबी इख्तलाफात से परेशान होते थे ना कि इतने सारे लोग हैं और ये बात भी नहीं मान रहे, इस्लाम पे आ नहीं रहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यफ्तिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून, ए नबी तेरा रब कयामत के दिन फैसला करेगा कि इनमें सही कौन था और गलत कौन है, तो मेरे पास ही आना है इन्होंने, मैं फैसला करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिरकों में भी जब इस्लाम दुनिया में आया तो उनमें फिरके बन गए, उनमें क्या बन गए, फिरके। अब देखो एक अहम पॉइंट की बात है, अल्लाह की बात समझ में आ जाए, क्या अल्लाह ने ऐसा किया कि जब दुनिया के सारे मजाहिब गलत हो गए थे तो अल्लाह ने सबको गलत ही चला दिया, अल्लाह ने हक पैगंबर को भेजा ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आखिरी नबी बना के भेजा, तो पता है आखिरी नबी की बरकत से काम क्या हुआ है, एक बड़ा खानदानी काम हो गया। वो खानदानी काम ये हो गया, अब अल्लाह ने और उसके रसूल ने ऐलान किया कि अब इस्लाम जब दुनिया में आ गया है और नए नबी नहीं आएंगे तो अब मुसलमानों में फिरके तो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमीन पर कोई ऐसा टाइम आ जाए कि सारे ही फिरके गलत हो जाएं, एक फिरका उनमें हमेशा حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈھمکانا غلط, وہ یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو آپ. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نہ 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 نہ, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ چھ آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ چھ غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی پانچ کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوی بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہوگا. کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان چھ جو بحث کر رہے ہیں, دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان, جس جس کی سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں, مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے, میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم ابھی چھوڑو, پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے, آپ کو صحیح بات بتاؤں میں, علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی, ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا, تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا, وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں, کیوں ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا. تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا, میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا, یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹیٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرف چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی, المحنت المفنت کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا یہ, یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, اس کے دلائل لے کے, میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے, خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا, پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں, دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا, وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا, بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں, بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا, کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا, نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی, تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں, باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں, तो बड़े तमीज से चलते आ रहे हैं, बड़े तमीज से वो है ना चलता, तो अंग्रेज ने देखा इनको कहां कहां तोड़ा जा सकता है। अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज ने कहा कि खत्म नबूत का मसला खड़ा करो, बोलो आखिरी नबी नहीं, एक और नबी निकालो। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को निकाला। फिर तर्क तकलीद का मसला पहले भी था, इतना जानदार नहीं था, अंग्रेज ने कहा ये मसला खड़ा करो, ये अबू हनीफा क्यों भाई। फिर ताकि हर आदमी अपनी राय पेश करेगा। अब आवाम की बौखलाहट खत्म होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो कह रहे हैं वो उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस कुछ और है, उसका कुरान हदीस क्या है। और फिर एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालना है, नफरतें पैदा करना, इतनी नफरतें अंग्रेज के आने से पहले नहीं थी जितनी अब नफरतें हो गई है मुसलमानों में आपस में। तो उसने कहा इस पे भी। फिर दूसरा उसने कहा मुनकिरीन हदीस, जो परवेजी फिरका है, कि भाई हम कुरान को माने। देखो अंग्रेज ये नहीं कर सकता था कि इस्लाम का इंकार कर दे, क्योंकि मजहब का इंकार पर लाना आसान नहीं होता। मजहब से इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। ईसाइयों ने अब तक ईसाइयत नहीं छोड़ी है, मेजोरिटी तो ईसाइयत को मानती है ना अभी भी। मजहब को छोड़ना आसान नहीं होता, बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत भी होती है इंसान को जिस मजहब में पैदा होता है। तो अंग्रेज ने कहा मजहब तो नहीं छोड़वा सकते ना इनसे, मजहब में ऐसी इनके इख्तलाफ डाल दो ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो ये जो मुनकिरीन हदीस पैदा हुए, इनको क्या लेबल लगाया, कुरान भाई, क्या करना है, कुरान। और ये बुखारी मुस्लिम ये तो बाद में लिखी है, दो दो तीन सौ साल के बाद, 150 साल, कोई 200 साल के बाद लिखी जा रही है। ये तो अजमियों ने कुरान के खिलाफ साजिशें की हैं, जितने मुहद्दिसीन है 99% तो अजमी है, अरबी तो है ही नहीं वो। तो ये तो अजमियों ने बाद में अरबियों को बर्बाद करने के लिए, इमाम बुखारी भी अजमी थे, बुखारा समरकंद के रूस की जो सोवियत यूनियन की आजाद रियासतें, जब पहले तो ये आजाद था ना, तो ये तो वहां के लोग हैं, इन्होंने सारे माज़ल्ला वही के मंजन बेचे हैं। लोगों को मकसद क्या था, कुरान से हटा देना। फिर बताया कि देखो बुखारी में तजाद है, उधर ये आ रहा है, उधर ये आ रहा है, उधर यूं आ रहा है, उधर ये आ रहा है, ऐसा प्रोपेगेंडा किया, पूरा एक फिरका बन के खड़ा हो गया। आप उनके पास बैठो, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी। मैं तो बैठा हूं ना, वो पता है बात, मैं तो बचपन में भी गया उन लोगों के पास। वो बात शुरू करते हैं अल्लाह की किबरियाई से, उनकी दी हदीस से जब आप मिलोगे ना, अल्लाह ऐसे निकालेगा आदमी, कहेगा भाई। एक लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी के रिटायर थे, वो मुनकिर हदीस था, वो सुबह शाम उसका काम ही यही था हमारे महल्ले में। और पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, मोहब्बत दुनिया में फैलाना, काम सारा नफरतों वाला, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाई है, PLO। मुझे उसका सदर बनाने चाहते थे वो, तो शुक्र है मैं नहीं बना। मैं जब उधर बैठा मैंने कहा ये तो कुछ और ही चीज है भाई, ये लेबल सबके अच्छे होते हैं, मोहब्बत फैला रहे हैं, हम लोगों को जमा कर रहे हैं। उसने कहा भाई देखो हदीसों की वजह से कितने फिरके बन गए, हदीस रफुल दैन करने की भी है, नहीं करने की भी है, जोर से आमीन की भी है, आयिस्ता आमीन की भी है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ो वाली भी है, इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ो वाली भी है। इसकी वजह से कितने जंग और मुनाजरे और फिरके। ओ भाई असल क्या है, कुरान, कुरान, अल्लाह, ऐसे अल्लाह निकालता था ना वो, अल्लाह, फिर अल्लाह बहुत बड़ा। इतनी 10 मिनट तो अल्लाह की किबरियाई बयान होती थी। हमारे जो लोग थे ना यूनिवर्सिटी के लड़के बड़के, सब बर्बाद हो रहे थे। मेरा चूंकि मजहबी घराना था, हमारे उलमा सोलह से हमारे ताल्लुक रहे हैं, मैं उसके अंदाजा हो गया, मैंने कहा ये गड़बड़ कर रहा है। तो मैं तो फिर मुख्तसर बात, मुझे पास तो इतनी नॉलेज नहीं थी मुनकिर हदीस के खिलाफ, लेकिन मैंने तो दो तीन चीजों में पकड़ लिया उसको ना। मैंने कहा तो कुरान खुद कह रहा है कि नबी की इत्तिबा करो और नबी कुरान की तशरी करेंगे, तो चलो ये सारी किताबें गलत हो गई। तो जो कुरान ने कहा नबी तशरी करेंगे वो किधर है फिर, वो ले आओ। तो मैं फिर अब वो यहीं पे फंस गया मेरा। फिर मुनाजरा बाद में भी एक ऑडियो पड़ा हुआ है इसी पे, उसमें भी मैंने इसी पे फंसाया था। मैंने कहा फिर वो कहां गया, तो कुरान ही को मान रहे हैं ना, चलो कुरान हो गया ना, अल्लाह जो है ना, जो आप कह रहे हैं अल्लाह, हमने अल्लाह को मान लिया, जल्ला जलालू और अम्मा नवालू, पता नहीं क्या क्या लगाता था वो। और सुबह शाम मौलवियों के खिलाफ, इन तमाम लोगों का मंजन जब तक बिकता नहीं है जब तक ये सुबह शाम मौलवियों को मुगल्लजात बकेने। अबे इन, वो भी यही कहता था, इन मौलवियों ने दुकानें खोली हुई है, ये मौलवी यूं करते हैं, ये मौलवी यूं करते हैं, और कुछ तकवे की चीजें भी ले आते हैं ये। वो कहता था अंडा हराम है, अब उससे लोग हो यार अंडा, उसने कहा ये तो गलीज पानी से बनता है, बस कुछ थोड़ा सा ना, कि ताकि पता चले कि हम लिबरल नहीं है, आजाद ख्याल नहीं है, हम तो उन चीजों को भी हराम कह रहे हैं जो तुम हलाल समझते हो, नहीं बहुत परहेजगार हैं। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अंडा खाना ही छोड़ दिया उस चक्कर में। तो अब क्या हुआ है कि मैं उसके दलाइल नहीं दूंगा उनको, हमने क्यों, लेकिन बनाई थी पीस लविंग ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ना लोगों को, और नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं, लेबल ये था मोहब्बत, मोहब्बत, बातें बड़ी मोहब्बत की, खिदमत करो, लेकिन घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई। घरों में बहसें शुरू हो गई। एक भाई कह रहा है भाई मैं क्यों बुखारी को मानूं, मैं क्यों मुस्लिम को मानूं, दूसरा कह रहा है मैं तो मानता हूं। एक नफरतें, कितने लोगों ने हमारी मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ी। मस्जिद कितनी बेहतरीन जगह है गैदरिंग की मुसलमानों की, गोरों के पास ये चीजें नहीं है। मस्जिद के मौलवी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर एक और साहब आए, एक वो अहले हदीस से, सारे अहले हदीस ऐसे नहीं होते, मैं बार बार बता रहा हूं। अहले हदीस में मौलाना इब्तिसाम इलाही और इहतिशाम इलाही ज़हीर साहब जैसे मोतदिल लोग भी, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया कि मैं तो सारी जिंदगी तरके रफुलदैन से नमाज पढ़ी है, और क्या उसने कहा ये जो मौलाना हिशाम इलाही ज़हीर, उन्होंने तो मुझे आज तक एक दफा भी नहीं कहा कि रफुलदैन करो। ये करते हैं, मैं नहीं करता, तो ना मैं उनको छेड़ता हूं ना वो। कह रहे इस बंदे के ये मसाइल ही नहीं है, ये खत्म नबूवत की बात कर रहा होता है और जो इज्तिमाई टास्क हैं उन पे चल रहे होते हैं। तो सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन फितना परस भी होते हैं। तो वो एक अहले हदीस आ गया हमारे महल्ले में, उसने जो छेड़ना शुरू किया है, बुखारी लेके बैठा हुआ होता था, फिर इतना उलमा के खिलाफ उसने जहर उगला है, बहुत से नौजवान मस्जिद से टूट गए। मेरी भी उससे बहसें हुई। तो क्या ये हो क्या रहा है? अच्छा, वो क्या फुकहा से हटाना, मुनकिरीन हदीस क्या कह रहे हैं, ये किताबें बाद में लिखी गई हैं, और मुनकिरीन फिका क्या कह रहे हैं, इमाम हुनीफा की कोई किताब दिखाओ। भाई इमाम हुनीफा की नहीं है, उनके शागिर्दों की। तो अबे इतने बाद में किताबें लिखी गई हैं तो वो किताबें हमारे लिए हुज्जत नहीं है। सहाबा के दौर में कौन सी किताब थी फिका की जिसको सहाबा अमल करते थे? सहाबा के दौर में कौन सा फिका हनफी था? हालांकि असल ये था कि कुरान और सुन्नत की एक तशरीह वो है जो आइम्मा मुज्तहिदीन रिटर्न फॉर्म में लिख के चले गए हैं, उसको फॉलो कर लो भाई, इसमें क्या है, आसानी। जब तक रिटर्न में नहीं थी तो लोग अपनी मर्जी से उलमा से मसला पूछते थे, जब हर चीज रिटर्न में आ गई तो फिका भी किसमें आ गया, रिटर्न में आ गया। हदीस भी रिटर्न में आ गई, हदीसें भी थी, फिका भी था, रिटर्न फॉर्म में बाद में मुरतब हुआ है। अब जैसे हदीस में इमाम बुखारी की किताब को बुखारी का नाम दे दिया, मुहम्मदी किताब का नाम थोड़ी दिया, तो ऐसे अबू हनीफा ने जो कुरान और सुन्नत से न्यूट्रल होकर मसाइल निकाले उनको नाम हमने क्या दे दिया, फिकहनफी का नाम दे दिया कि मुरतब हुए हैं वो, उनके शागिर्द मुरतब हैं। इमाम मालिक के फिका को मालिकिया का नाम दे दिया, तो इसमें कौन सी क्यामत आ गई, इससे उम्मत टूटने से क्या हो गई, बच गई कि भाई इन्हीं में से किसी को फॉलो करो। जैसे हदीस में क्या हुआ कि बच गई, अब हर आदमी सनदों की बहस नहीं कर सकता, भाई ये किताबें हैं ये हैं। तो जो काम मुनकिरी ने हदीस किया था, वही जो मुतशद्दिद किस्म के अहले हदीस थे ना, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। मुझे अब वो बचपन का वो अहले हदीस से अभी तक मुनाजरा याद है, मुझे मुनकिरी ने हदीस से वास्ता पड़ा। फिर क्या हुआ, जो अहले हदीस हजरात, एक था बड़ा शरारती था वो, मैं फिर बार बार कहूं सारे अहले हदीस शरारती नहीं होते, और सारे बिदअती नेक नहीं होते, ये भी बता दूं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिदअत को सिर्फ अहले हदीस की मुखालफत में उस बिदअत को यानी सुन्नत करार देने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। तो दूध के सारे धुले हुए नहीं होते, तो वो मुतशद्दिद था इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, मुझे कहने लगा यार ये जो है ना इतने सारे फिरके हनफी शाफी मालिकी हंबली कुरान और सुन्नत पे क्यों नहीं आ जाते? तो मैंने कहा ये क्या तौरात और इंजील पे आए हुए थे ये लोग? अच्छा, उस वक्त वाकई मुझे कुछ नहीं इन चीजों का ज्यादा पता था, मेरी तो 16-17 साल उम्र थी। तो उस अहले हदीस ने मुझे बिठाया, उसने कहा कि देखो हर वक्त उनका यही काम था मस्जिद में टोकना उसको, तू जोर से फातिहा पढ़, टांगे ये करो और रफुलदैन करो, हर वक्त यही काम था। हम उस वक्त कुछ और एक्टिविटीज में लगे हुए थे, हमने लड़कों की एक जमात बनाई हुई थी कि यार हम लड़कों को घेर घेर के मस्जिद में लाते थे, शरई पर्दा उनको तरगीब देना, घरों में शरई पर्दा करवाओ, नमाज पढ़ो, इन चीज वो इधर ले आए ना हमें। तो मैंने कहा ठीक है जी, अगर कोई सही बात करने तो मान लूंगा मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई प्रोफेशनल मुनाजिर नहीं हूं ना था मैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैंने उनसे कहा कि आप ये जो कर रहे हैं कि ये सब गलत हैं, तो सदियों से तो यही चलता आ रहा है, कोई हनफी है कोई शाफी है, पूरी पूरी रियासतें इसी पे चली हैं, तो आप क्या है? नहीं कह रहे ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा फिर क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखें हर शख्स कुरान और सुन्नत में तहकीक करे तो इससे ये सब खत्म हो जाएगा इख्तलाफ, सबकी नमाजें एक जैसी हो जाएंगी। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ, अबू हनीफा ने इमाम शाफी ने यही किया या कुछ और किया? कुरान और सुन्नत में तहकीक की ना, उन्होंने कहा। मैंने कहा उनका इल्म हमसे ज्यादा, उनका तकवा हमसे ज्यादा, वो सहाबा के जमाने के करीब थे, उनमें गलती का इम्कान हमसे कम, फिर भी चार बन गए। और जब 4 अरब उम्मत, 1 अरब 22 करोड़ उम्मत के लोग कुरान और सुन्नत पे तहकीक करेंगे तो 1 अरब 22 करोड़ फिका बनेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब हैं, इनका भी तो मनहज वही है जो अहले हदीस का है कि मैं किसी की तकलीद नहीं करता और सिर्फ मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूं। اب اہل حدیث حضرات جواب میں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ قرآن و سنت کی وہ فہم جو اسلاف سے منقول نہیں ہے وہ فہم معتبر نہیں ہے, یہی کہتے ہیں نا. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, اسلاف میں تو سب سے پہلے ہی ائمہ اربع آتے ہیں, تو بھائی انہی کی فہم معتبر ہے. ورنہ اگر آپ بے لگام قرآن و سنت کے نام پہ چھوڑ دیں تو پیدا ہوتے رہیں گے. کل کوئی آئے گا جو انجیل علی مرزا کو بھی غلط کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا جو سب کو غلط کہے گا. تو یہ قیامت تک لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے گی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا چاروں اماموں نے تحقیق کی تو چار مکاتب فکر بن گئے. اب آپ 1,22,00,000 امت کو لگا رہے ہو, وہ اثر نو دوبارہ قرآن و سنت کی کیا کرے, تحقیق کرے, تو اس سے امت سمٹے گی نہیں. تبھی ابھی نہیں سمٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہی ہے. پیچھے جتنا جائیں گے نا سمٹتی بھی نظر آئے گی, ماضی میں جتنا جائیں گے اور جتنا فیوچر میں جائیں گے پھیلتی بھی نظر آئے گی, فرقوں میں بڑھتی بھی نظر آئے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو انگریز نے کیا کیا, ہر سطح پہ مسلمانوں کو توڑا اس نے, ہر سطح پہ اس نے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے فرقے جب بن گئے نا ہندوستان میں, تو جو اصل مذہب کو فالو کر رہے تھے نا, جو گورے کے آنے سے پہلے تھا, اس کو بھی تو کوئی نام دینا تھا نا لوگوں نے, اس کو علماء دیوبند کا نام دیا گیا. حالانکہ اس میں دیوبند کے بہت سارے دیوبند کے لوگ نہیں تھے, دیوبند تو ایک علاقہ تھا نا, بلکہ پورے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ جو بدعتی نہیں تھے یا وہ مذاہب اربعہ کے منکر نہیں تھے, جو وہ ان کو لوگوں نے نام کیا دے دیا. اب ان کو یا تو مسلم نام دیا جاتا, اگر ہم ان کو مسلم نام دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا باقیوں کو آپ کیا قرار دے رہے ہو, غیر مسلم. تو فرق کرنے کے لیے, بھائی یہ بریلوی ہیں, یہ کیا ہیں, یہ دیوبندی ہیں, تو یہ پبلک نے نام دیا ہے. تو ورنہ علماء دیوبند کی بنیاد 1867 میں یا 57 میں نہیں رکھی گئی ہے, مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. صحیح ہے نا, جو انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے. جو علماء دیوبند کی جو منہج ہے وہ قرآن و سنت ہے, اجماعی امت ہے, اور فروعی اختلافی مسائل میں اہل سنت والجماعت کے چار اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا اور دوسرے کو برا بلا نہ کہنا, یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں, اور میں بھی اسی معنی میں دیوبندی ہوں. اس کے علاوہ میری نظر میں دیوبندیت کو کوئی اور مفہوم اگر ہے تو وہ غلط ہے, پھر میں نہیں ہوں. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. تبھی میں جب دلائل دیتا ہوں نا تو میں اسی اصول کو سامنے رکھ کر دیتا ہوں, قرآن حدیث اجماع صحابہ. اور جب اختلاف ہوگا فروئی مسائل میں جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, تو پھر میں کیا کہتا ہوں, بھائی اب اس میں میں دلیل نہیں دی, یعنی اس میں یقینی بات میں نہیں کر سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس میں امام شافی کی یہ رائے ہے, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, میں ابو حنیفہ کی رائے پر عملی طور پر عمل کرتا ہوں, باقی یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اجتہادی چیزوں میں آپ یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تبھی میں کہتا ہوں بھائی رفع الیدین کرنے والی نماز بھی ٹھیک ہے کیونکہ امام شافعی قائل ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہے, نہ کرنے والی بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب امام حنیفہ کی رائے ہے کہ یہ, اس پہ بہت سارے قرائن بھی ہیں کہ آخری نماز ہے ترک رفع الیدین والی. وجہ کیا ہے کہ بھائی دو سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ چھوڑ دیا تھا, ہم کہتے ہیں چھوڑنے کی حدیث دکھاؤ کہ نبی نے کب کہا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا, کہاں ہے نبی نے کہا کہ دو سجدوں کے درمیان میں کرتا تھا, اب نہیں کرو. ملا سکتے ہو آپ, بھائی عمل سے پتا چل رہا ہے کہ اگلی جو نماز آپ کی آ رہی ہے اس میں دو سجدوں کے درمیان آپ رفع الیدین نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو جو دلیل آپ دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے ترک کرنے کی دیتے ہو, وہی دلیل ہم رکوع والے رفع الیدین کے ترک کرنے کی بھی دیتے ہیں. آپ کی دلیل تو 100% صحیح ہے اور ہماری والی غلط ہے, تو یہ ناانصافی ہے بھائی. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نمازیں ثابت ہیں, لہذا ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم کہتے ہیں یار دونوں کا اختلاف ہوا, امام شافی کا امام حنیفہ کا, لہذا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. لیکن پریکٹیکلی ہم نے فالو کس کو کیا ہے, امام ابو حنیفہ کو, اس لیے کہ بر صغیر میں انہی کا فقہ آیا. تو جو فقہ جہاں آئے تو 1.5 اینچ کی الگ مسجد کیوں بناؤ بھائی آپ وہاں پہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہاں لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, مدارس اسی کے ہیں, علماء صلحاء اسی کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جو ابھی آسٹریلیا میں گیا, وہاں فقہ حنبلی کے بڑے عالم ہیں, بڑے عالم ہیں, وہ مدرسہ میں فقہ حنفی پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہو, کہتے ہیں یہاں سب لوگ حنفی ہیں تو میں کیوں 1.5 اینچ کی مسجد قائم کروں یہاں پہ بھائی, جب وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہی پڑھاؤ ان لوگوں کو. عملی طور پر کہتے ہیں میں اپنی ذات کی حد تک فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں. تو یہ بڑا خاندانی طریقہ تھا جس سے امت ٹوٹنے سے بچی ہوئی تھی. इसके अलावा जितने पैकेज चल रहे हैं ना मार्केट में, तो वो मेरे भाई लेबल हैं खानदानी किस्म के, अंदर मसले सारे क्या उसमें खराब हैं, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो उलमा देवबंद का ना कोई नया फिरका है, ना कोई नई जमात है, ना ये उलमा देवबंद का जो है ये 1800 या 19वीं सदी में वजूद में आए हैं, ये वही है जो सदियों से चला आ रहा है, उनके सारे दलाइल वहीं से जाके मिलते हैं। हाँ, उनसे जिन्होंने इन्हिराफ किया है, वो बाद में इन्हिराफ हुआ है, तभी वो चंद शख्सियतों पे जाके मिलते हैं, उलमा देवबंद किसी एक शख्सियत पे जाके नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर हम जब कोई मसला पूछता है कुरान हदीस इजमाए सहाबा, उसके बाद जिन मसाइल में इख्तलाफ होगा, तो फिर उन इख्तलाफी मसाइल में हम 1000 साल पुरानी किताबें भी हैं, 1200 साल पुरानी किताबें भी हैं, 600 साल पुरानी किताबें भी, वो किसी शख्सियत के गिर्द नहीं घूम रही। वो मसला कुरान और सुन्नत से मुस्तमद उन तमाम किताबों में मिलेगा आपको। लेकिन आप उलमा देवबंद के अलावा अगर जाके देखते हो ना, बहुत से लोग उनका एक दो शख्सियतों पे जाके खत्म हो रहा है, तो शख्सियत परस्ती उनमें है। और उलमा देवबंद की कोई बात अगर हमें लोग कहते हैं कि फिर आप हर बात में देवबंदियों को वो क्यों करते हो, उनका दिफा क्यों करते हो, ये भी लोग इल्जाम लगाते हैं, फिर आप हर बात में उलमा देवबंद का दिफा करते हो, तो ये इल्जाम भी आपने ही लगाया हुआ है। हम हर बात में कर रहे होते तो हम इज्तिमाई दुआ के कायल होते, जबकि हम इज्तिमाई दुआ के फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के कायल बोलो ना नहीं है, क्योंकि नहीं मिलता हमें कुरान और सुन्नत से भी नहीं मिलता, इजमाए सहाबा से भी नहीं मिलता, और फिर हमें किसी सहाबी से भी नहीं मिलता। यही वजह है इमाम हुनैफा से भी नहीं मिलता, क्योंकि इमाम हुनैफा तो न्यूट्रल होकर तहकीक की ना उन्होंने, सही है ना, न्यूट्रल होकर की, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो हम तो नहीं कायल इसके, समझता है कि नहीं समझता। लेकिन हम ये नहीं है कि उलमा देवबंद में अगर एक गलती आ गई है कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को उन्होंने सुन्नत मानना शुरू कर दिया, तो अब हम कहें ये चूंकि देवबंदी, इनकी मैं इबारतें निकाल निकाल के दिखाऊं, ये देखो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लिहाजा ये गलत है, अब मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल होके क्या होगा कि मेरे नाम से एक फिरका बन जाएगा, जिसको फिरका तारीखिया कहना फ्यूचर में लोग शुरू कर देंगे। अभी तक तो नाम नहीं है, लेकिन जब ज्यादा लोग फॉलोअर बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, फिरका बन जाएगा। ये काम मत करो, हम ये नहीं कह रहे कि कोई, यानी आपने उनको मिनवान हर हर चीज में ठीक समझना है, हर एक से गलती होती है, जितनी गलती है उतनी रखो, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश बोलो मत करो। बहसी जेवर में लिखा है 15 शाबान का रोजा सुन्नत है, उलमा देवबंद की नहीं है, ये बहसी जेवर के मसाइल उलमा देवबंद के नहीं है, सदियों पुरानी किताबों से लिए गए, कुरान से लिए गए, हदीस से लिए गए हैं, और जिन मसाइल में इख्तलाफ था तो उनमें इमाम हनीफा की राय ली गई है, यानी फिकह हनफी की राय ली गई है, ये है उसमें। अब कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें हमें फिकह हनफी की राय भी नहीं मिलती, उसमें इज्तिहाद होता है, तो उस इज्तिहाद में क्या होता है, बाकी किताबों के हवाले होते हैं, तो वो हवाले में अगर साबित हो जाता है भाई ये गलत है, तो हम उसको क्या करते हैं, नहीं मानते। बहसी जेवर में लिखा है 15 शाबान का रोजा सुन्नत है, अब कोई ना कुरान से है ये, ना सही हदीस से है, ना इमाम हनीफा से है, तो हम कहते हैं हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह बहुत बड़े अल्लामा थे, लेकिन भाई उनसे हदीस की तहकीक में क्या हो गई है, गलती हो गई है। और ये इतनी हमारे यहाँ ये उर्फ में इतनी आम बात है कि अगर ये हजरत हकीमुल उम्मा जिंदा होते ना, मैं उनसे जाके कहता तो उनको भी गुस्सा नहीं आना था। आज ही मिसाल मैं एक बता रहा था, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह कितने बड़े आदमी थे, हजरत मुफ्ती तकी साहब और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके शागिर्द हैं, 8 साल इन दोनों बुजुर्गों ने हमारे हजरत से पढ़ाए, कितना बड़ा मकाम होगा। मैं 5वीं दर्जे में था, दर्जे खामिसा में, हजरत ने एक मसला लिखा हुआ था, सिर्फ फतवा नहीं दिया या जबानी मसला नहीं बताया, बल्कि रिटर्न फतवा और अपनी किताब आहसनुल फतावा का उसको हिस्सा बना दिया था, छप गई थी वो। मैंने हजरत को जाके बताया कि हजरत ये मसला दलाइल की दुनिया में कमजोर मालूम होता है, सही मसला ये। मैं 5वीं खामिसा का तालिबे था, तो हम तो अपने अकाबिर का वो नहीं करते कि कोई गलत बात भी हो तो हमने उनको हिमायती करनी है, हमने कहा हजरत ये तो सही नहीं है। मैं 5वीं क्लास में था, उस मदरसे की 5वीं क्लास में, दर्जे खामिसा में, हजरत ने यूं देखा और अपना किताब मंगवाई और उसको देखा, फरमाया फौरन इसको अगले एडिशन में चेंज करो, ठीक है ना, नहीं यही बात समझ में। हजरत ने ये नहीं कहा तुम तो देवबंदी से निकल गए हो, जब मैंने एक बात कही है तो इसका मतलब बोला मैं देवबंद ने ही बात कही है, बोला मैं देवबंद ने ही बात कही है, तो फिर तुम्हारे लिए उससे इन्हिराफ जायज नहीं है। ये एतदाल उलमा देवबंद में हमने देखा है, बाकियों में किसी को गलती से रुजू करवा के तो दिखा दो, तुम्हारे पसीना निकल जाएगा, उनको पीछे हटाना मुमकिन नहीं है, पसीना निकल जाएगा तुम्हारा। दावे ये होंगे हम न्यूट्रल हैं, हम भाई बिल्कुल कुरान सुन, आप 3 तलाक के मसले में आप करवा के तो दिखाओ ना, हम जो इतने कॉन्फिडेंटली चीख रहे हैं, अबे भाई कुरान में हदीस में सहाबा से तीन तीन ही है, इतने बड़े बड़े आदमी बातें कर रहा है तो कुछ तो जान होगी ना उसमें, आओ हमसे बैठ के कोई मशहूर आदमी बात करना चाहे इस मौजू में मैं तैयार हूं, नहीं रुजू करेंगे। और मैंने तीन तलाक के मसले पर जब तहकीक की थी इस नीयत से की थी कि अगर कोई गुंजाइश मिलती है तो लोगों को देनी चाहिए, देवबंदियत की दिफा के लिए नहीं की थी मैंने, ना हनफियत के लिए। जब मैंने तहकीक की मैंने कहा कोई मिलती नहीं है तो कहां से दे दे यार गुंजाइश हम इसमें, ठीक है ना, कख भी नहीं है। बाकियों को हमने देखा भाई बहुत जामिद हैं, और ये अदालती खुला पे जो आजकल वो मेरे खिलाफ जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने किले बनाए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन उन्होंने जो क्योंकि मेरा नाम लेके दोबारा से रद्द करना शुरू कर दिया है, अपने फैंस को जिम्मे में लगाया हुआ है, फिर मेरा नाम भी ले रहे, तो मैं एहतराम के साथ नाम ले रहा हूं, मुनाजरे के लिए ऐसे नाम नहीं ले रहा। इंजीनियर अली मिर्जा ने भी ये कहा कि ये जो फिकह हनफी को वो डिफेंड कर रहे हैं ना ये खुला के मसले में हनफियों के, ऐसा भाई इंजीनियर साहब काइंडली आपकी खिदमत में गुजारिश है, ऐसा नहीं है। हम इतने ब्रॉड माइंडेड हैं इस मसले में कि बिलफर्ज अव्वल तो जिस तरह आप बता रहे हो ना कि फिकह हनफी में नहीं है, अव्वल तो ऐसा है नहीं। अगर बिलफर्ज फिकह हनफी के बजाय फिकह शाफी में भी गुंजाइश मिलती ना तो हम इसमें फिकह हनफी छोड़ देते मजलूम औरतों को जुल्म से बचाने के लिए, और छोड़ा है हमने, फिकह मालिकिया पे फतवा नहीं दिया हमने क्या। हम इसमें बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, मसला आप लोगों के साथ है, आप अपनी जगह से एक इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पास इस अदालती खुला जो इस वक्त चल रहा है कोर्ट में इस पर ना आपके पास कुरान है ना आपके पास हदीस है, और आपको मेरे ये दावे पहुंच भी रहे हैं जिन पे आप रिएक्शन रिकॉर्ड करवा भी रहे हैं, लेकिन आपको पता है मुफ्ती सही कह रहा है और आपने वो हदीसें पढ़ी हुई हैं फिर भी आप रुजू नहीं कर रहे उनसे, और हमने फिर भी आपको माफ किया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो दूध दो और दो चार की तरह दिखा सकता हूं, है ही नहीं ना कुछ, कहां से मिलेगा। जो हदीसें आप पेश कर रहे हो उनका तर्जमा तो करो आप। तो भाई ये जो कहते हैं ना कि हम शख्सियत परस्त नहीं है, बहुत बड़े शख्सियत परस्त होते हैं वो। अभी आप देखो कैसर राजा साहब का और इंजीनियर साहब का टाकरा चल रहा है, आप न्यूट्रल होकर गौर करोगे ना कैसर राजा बरहक है। अब उन पर कैसर राजा पे इल्जाम लगा दिए कि ये मदरसों में आ रहे हैं, मदरसों में नहीं, ये जामे तो रशीद भी दौरा हुआ ना कैसर राजा साहब का, तो कहा ये असल में जिन मुफ्तियों के पास बैठ रहे हैं मौलवियों ने इनको बेवकूफ बनाया। ये मदरसों की ये खूबी थी कि एक आदमी जो मौलवी नहीं है देखा कि जब ये इल्हाद के खिलाफ एक अच्छा काम कर रहा है तो मदरसों ने ना देवबंदियत देखी ना बरेलवियत देखी, ब्रॉड माइंडेड होकर कहा कि आओ यार हो सकता है हमें आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। उलमा ने ये कहा, ये तो उलमा अपने मकाम से बहुत नीचे आ गए। इससे ये जो नारा लगाया जाता है कि मदरसे वाले तंग नजर होते हैं, ये इल्जाम क्या हो रहा था गलत, तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए थी जामियत रशीद की, क्या उस बंदे की ना दाढ़ी भी प्रॉपर नहीं है और वो बिल्कुल एक तालिबे भी नहीं, यानी मदरसे का तालिबे भी नहीं है वो, तो बिल्कुल वो अपने आप को हनफी भी नहीं कहते, मुझे नहीं पता वो ऐसा राजा फिर हनफी को फॉलो करते हैं शाफी को करते हैं ये क्या है अहले हदीस है, मुझे अभी तक नहीं पता और हमने पूछा भी नहीं। हमारे ये मसाइल ही नहीं है ना, हमारे लिए कोई इन चीजों की इतनी ज्यादा वैल्यू थोड़ी है। हाँ उसकी है कि जो इन चीजों में उलझा रहे हो लोगों को, तो कैसे राजा साहब इन चीजों में नहीं उलझाते लोगों को। तो जब वो जामियत रशीद आए तो मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार मुझे पास टाइम होता मैं आपकी वर्कशॉप में लाजमी बैठता ताकि मुझे आपसे सीखने का, और वाकई में बैठता, मैं मजाक थोड़ी कर रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। हो सकता है जो बातें आप सिखा रहे हो हमें पहले से आती हूं, लेकिन इसका भी तो इम्कान है यार कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमें नहीं पता हूं। 100% दुनिया में कौन कामिल हो सकता है, आती होंगी तो रिवाइज हो जाएंगी, नहीं आती होंगी, हो सकता है 100% हमें ना आता हो जो आप बता रहे हो, कुछ भी ना पता हो हमें उस बारे में। तो इसमें ब्रॉड माइंडेड, तो इसमें मदरसों की तारीफ बनती थी कि यार ये तो हर तबके के लिए इनके दरवाजे क्या है खुले हुए हैं, लेकिन अब वही तारीफ क्योंकि आप नेगेटिव सोच से देख रहे हो तो वही इल्जाम बन गई है कि कैसर राजा साहब असल में मौलवियों के पास जा रहे हैं ना तो उन्होंने ये पटियां पढ़ाई हुई हैं। तो इसलिए भाई ये बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह करे ये फिरके की अजाब से आप बचो। तो बचने का तरीका मैं नहीं कह रहा आप देवबंदी बनाओ या अपने नाम के साथ देवबंदियत का लेबल लगाओ, कतन नहीं, ये तो मैंने इतनी डिटेल थी तो बता दिया कि हमारे वही नजरियात हैं, वरना मैं अपने नाम के साथ देवबंदी नहीं लगाता। हाँ ये जरूर है कि जहां कुरान और सुन्नत में इख्तलाफ होगा तो इतना जरूर है कि हम बिल्कुल बेलगाम नहीं है, बल्कि अपने चारों फिका में से एक को आप क्या कर लो फॉलो, आप फिका शाफी को फॉलो कर लो अगर हनफी पसंद नहीं है, आप फिका मालिकिया को फॉलो कर लो, आप फिका हम्बली को फॉलो कर लो, चारों से निकलने की बेलगाम मत हो जाओ, क्योंकि ये आगे बेलगाम शुतर बेलगाम ऊंट है, हर आदमी कुरान और सुन्नत के नाम पे मंजन बेच बेच के लोगों का बेड़ा गर्क कर देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो इंजीनियर साहब से दोबारा मैं माजरत, मेरा मकसद आपसे उसी स्टाइल में बहसें शुरू करना नहीं है जो पहले की हैं, समझते हो, ऐसा ना हो फिर वही क्लिपबाजी शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, जैसा आप काइंडली आप आपकी मुकम्मल रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं ना, मेरे बयान पे रिएक्ट कर रहे हैं, पहले मेरा बयान चल रहा है फिर आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन गलत है आपकी, वो ठीक नहीं है। आपके जो रेफरेंसेज हैं बाज दफा वो ठीक नहीं होते, बाज दफा रेफरेंस ठीक होता है, उस हदीस में वो मजमून होता नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं, और आप फिकह हनफी पे भी गलत इल्जाम लगा रहे होते हो कि फिकह हनफी में, एक दफा इन्हीं साहब ने बोल दिया कि फिकह हनफी में है कि वेल मछली हलाल नहीं है, क्या लिखा हुआ है फिकह हनफी में है वेल मछली हलाल, जब मछली है तो क्यों नहीं हलाल है, सही है ना। हाँ किसी पागल ने लिख दिया हो तो उसके हम जिम्मेदार थोड़ी है, फिकह हनफी के मोतबर किताबों में दिखाओ, बोल दिया वेल मछली हलाल नहीं, हनफी काम खमे फिकन, एक आदमी जो है ना बोले जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, और नीचे जो फैंस हैं उन तमाम के ताने बाने मिलके, ना सऊदीया के किसी आलिम को मानते हैं वो, ना अबू हनीफा को मानते हैं, ना इमाम शाफी को मानते हैं, किसी को भी नहीं, वो कहते हैं वन मैन शो कि एक बंदा है। तो ये इस्लाम है, ये मुस्लिम उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, इस्लाम किसी एक बंदे पे डिपेंड बोलो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये इस्लाम आके घूम फिर के किसी एक बंदे पे डिपेंड करना शुरू कर दे, ये तो बहुत कमजोर हो गया ना मजहब। इस्लाम हजारों पे हजारों उलमा सुलहा गुजरे हैं जो उम्मत को गाइड करते रहे हैं, ये उम्मत यतीम और लावारिस नहीं है, ये पिछली उम्मतों की तरह नहीं है, ला तस्तमी उम्मती अला जलाला, फरमाए मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, तो ला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती गाहिरीन अलल हक, कितनी सारी हदीसें इस बारे में। तो इसलिए मेरे भाई ये जो है ना नारों पे मत जाओ, हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के बाद हम क्या करते हैं, जो सहाबा मा अना अलैहि जन्नती फिरका, जो नबी ने बताया ना मा अना अलैहि व असहाबी, फरमाया मैं और मेरे सहाबा, तो हम नबी को मानते हैं और कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जिस पे कौन चलता है, सहाबा, हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसके बाद फिर जब उसमें भी इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो हम कहते हैं आजकल के प्रोफेसर तशरी नहीं करेंगे, काइंडली आप ये जहमत ना करें, जो तशरी पहले चारों इमाम जिनको पूरी उम्मत मानती है उनका फिका मुरतब है, बाकियों का मुरतब है नहीं, जैसे इमाम बुखारी की किताब तो मुरतब है, बाकियों की कहां है, अब कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस भी गुजरा हो तो गुजराओ भाई, हम क्या करें उसका, हमें तो वही है नहीं उनके उलूम हमारे पास, तो इन्हीं के मुरतब है। हम कहते हैं नए फिरके बनाने से बेहतर है एक की तरफ मंसूब हो जाओ और बाकियों को क्या समझो, सही समझो, बात बड़े आसानी से हल हो जाएगी। हाँ उलमा जहां जरूरत महसूस करेंगे वो खुद ये कर लेते हैं, भाई यहां फिकह हनफी के बजाय फतवा किस पे दिया जाए, फिकह शाफी पे, यहां फतवा किस पे दिया जाए, वो उलमा खुद जरूरत महसूस कर लेते हैं, उलमा में ऐसा जुमूद नहीं है। सऊदी अरब में हज के मसाइल में हमने खुद फिकह हम्बली पे फतवा दिया है बहुत से लोगों को, भाई वहां पर बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए फिकह हनफी पे चलना, तो लेकिन ये अवाम ना करे, अवाम बेलगाम हो जाएगी, और उलमा से बदगुमान ना हो आप, ये ना कि ये हमारे मंजन, यानी ये क्यों जबकि हमारे ठेकेदार बन गए, तो हर चीज में भाई उसके माहिरीन ही के हाथ में आपकी लगाम होती है, सेहत की लगाम डॉक्टरों के मशवरे पर अमल किया जाएगा, ये नहीं कहेंगे डॉक्टर कब से ठेकेदार हो गए हमारी सेहत के, तो उलमा इल्म में उलमा ही की बात का को माना जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा ये कब से ठेकेदार हो गए। तो अगर आपने उलमा को बीच से निकाल लिया तो इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दोगे आप, समझते हो गए नहीं समझते हो, अल्लाह ताला समझने के बल्कि तो अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो भाई नमाज का टाइम हो रहा है बस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज मैंने थोड़ा सा तस्किरा जहलम का कर दिया बहुत अरसे बाद, तो उसमें दो तीन चीजें फिर और लगा देते हैं जब चली पड़े। ठीक है, अभी कुछ चीजें याद आई थी रह गई दिमाग से, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो हदीस 2812 है इसका भी कई दफा जवाब दिया जा चुका है, लेकिन अब मैंने सोचा इसका जवाब मैं 1 1 2 1 दूंगा, 2812 का 1 2 1, क्योंकि फिर जवाब दो तो फिर कुछ घूम जाता है बात। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात, ये जो हजरत मुआविया पे इल्जाम लगाया जाता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से माज अल्लाह हजरत अली को गालियां दिलवाई जाती थी, ये इल्जाम भी लगाया गया ना, ये खूब समझ लो हदीस के अल्फाज में सब और शतम के लफ्ज हैं। सब और शतम का लाजमी तर्जुमा ये करना गालियां, ये बिल्कुल गलत है। किसी की पॉलिसियों से इख्तलाफ करना और किसी के बारे में कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो यानी उसकी पॉलिसियों से मुताल्लिक, इसी में एक मिसाल देता हूं। जनाब इंजीनियर साहब ने जब ये सब का लफ्ज है ना, सब का लफ्ज, हजरत अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तलाफ हुआ था किसी मसले पे, तो उसमें यतसाबानी ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں جہلم گیا تھا تو پورا سب کچھ, لیکن وہ کیا کریں, وہ مسئلہ یہ ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی. تو وہاں یہ ترجمہ کیا, بھائی دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی, بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے, وہاں ترجمہ کرے ہو گالیوں سے, تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے, اختلاف تو وہ تو تھے نا, اختلاف تو تھا, اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے, حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے, صحیح حدیث ہے مشکات کی, یا نشے کے پہلے, نشے میں بھی, نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا گہری تھکاوٹ ہو تو پھر نماز نہ پڑھو, کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یشتمو, اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کرتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے, ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم, کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا, اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا, اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے, تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا, تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے دو جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے, وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا, یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں, لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا, اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ, نہ حضرت معاویہ نے اچھالا نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ انفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. تو کوئی فقہ انفی میں حرام نہیں ہے بھائی, حلال ہے فقہ انفی میں, مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی یہ بہت ساری باتیں فقہ انفی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ فقہ انفی میں ایسا ہے, حالانکہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا, یا پھر وہ صرف فقہ انفی میں نہیں, وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے, سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں, ابھی چونکہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا, تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا, میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے, دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو, آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا, یہ ذہن میں رکھو, ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا, وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں, میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے, اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا. پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی, خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو چار چار شادیاں چیختا ہوں, آپ کو عیاش بنانے کے تھوڑی چیختا ہوں, میں پاگل ہوں کیا میں؟ تمہارے چار شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی, مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو, وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے, جو انگریزوں کا حال ہو گیا, اتنی ترقی کے بعد بھی بےچارے برباد ہو رہے ہیں, تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں ان چیزوں میں, اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہوں اور بنو امیہ کے پھٹے سلجھاتا رہوں, تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی, اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ, آپ کریں میرا نام نہ استعمال کریں, نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے, کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے, تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, क्योंकि फिर मैं इसी तरह करूंगा। अभी तक मेरा एक भी मेरा ख्याल है ऐसा क्लिप नहीं है जिसमें इंजीनियर साहब का मैंने बयान चला के रिएक्ट किया उस पर। असल तो तरीका यही होता है कि आप अगले का बयान चलाएं कि ये इन्होंने ये कहा है और ये क्या कहा है, ये देखो गलत है, तो इंजीनियर साहब आप रुजू कर लो। आपने कहा रफूल दैन की ये तरके रफूल दैन की हदीस ज़ईफ है, किसी ने भी सही नहीं कहा, ये देखो सही कहा हुआ है। अब वहां फिर भागने का रास्ता नहीं होता, फिर आपके फैंस आपको बोलेंगे ये तो क्या दिया ना, ये तो ये क्या, आप रुजू करो। फिर इतने रुजू करवाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना, स्टॉप नहीं होगा। रुजुओं की एक तवील फहरिस्त है। आपने कहा कि ये जो कब्र की मिट्टी वाला अकीदा है कि कब्र की मिट्टी जो है ना अर्श से अफजल है, ये उलमा देवबंद का गढ़ा हुआ अकीदा है। गढ़ावा किसे कहते हैं जो इजाद करदा हो? नहीं भाई, ये तो सदियों पुराना अकीदा है, सही है ना, ये तो फला का भी है, ये तो अभी मैं बताऊंगा ना, अभी थोड़ी मैं बहस चढ़ूंगा, ये तो मुहद्दिसीन का, ये तो फला का, ये तो फला का, ये तो फला का है। आपने कहा यह कुरान और हदीस के खिलाफ है, और उसमें आपने जो कुरान की आयत पढ़ी उससे तो इसकी कहीं मुखालफत साबित हो नहीं रही, ये देखो ये तर्जमा आयत का, इसका तर्जमा ही आप गलत कर रहे हो, तो आप इससे रुजू कर लें कि मैंने गलत तर्जमा किया, बिल्कुल साफ पता चल रहा है ये, आप ये इसका मतलब ही नहीं बनता। तो इतने चीजें होंगी, इतनी चीजें होंगी, इतनी चीजें होंगी कि आप नहीं टिक पाओगे भाई। वो कहते ना तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बहुत मसला है। आपने कहा था, मैंने कहा था, हजरत हसन ने कसरत से शादियां की हैं, आपने कहा ये इमाम हसन की तौहीन है, किसी हदीस में नहीं है, ये किसी हदीस की किताब में नहीं है, तो मैं फौरन दिखा दूंगा, देखो आपका पहले क्लिप चलाऊंगा मैं। आप कह रहे हो किसी हदीस की किताब में नहीं है, मैं दिखाऊंगा ये री हदीस और ये किताब, फिर आप कहोगे ज़ईफ है, मुझे पता है। तो भाई आपने दावा ये नहीं किया था कि ज़ईफ है या सही है, आपने कहा था कि किसी किताब में ये है ही नहीं, ये किताब, फिर आप कहोगे हदीस की किताब नहीं है, ये आपका क्लिप है जिसमें आप कह रहे हैं ये हदीस की किताब है। फिर आप कह रहे हो ये ज़ईफ है, ये ज़ईफ नहीं है भाई, जिस बेस पे आप ज़ईफ कह रहे हो वो बेस क्या है, गलत है, ये तो सही है। तो आप और हैं अभी, तो अगर आते गए ना तो भी बता, बहुत हैं। आपने कहा ये अदालती खुला औरत को भी हक है तलाक का, आपने जो हदीस पढ़ी भाई वो ये तर्जमा नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते, वो ये नहीं है। आपने कहा इस्लाम में सास का कोई रिश्ता ही नहीं है, इस पर कोई कुरान और सुन्नत की दलील नहीं है, ये कुरान की आयत है भाई, इससे ससुराल का रिश्ता हो क्या हो रहा है, साबित हो रहा है। आपने कहा था औरत पर शौहर के रिश्तेदारों की खिदमत लाजिमी नहीं है, ये री बुखारी की हदीस, इससे पता चलता है बाद साहबा ने शादी की ही अपने बच्चे पलवाने के लिए, सोतेले बच्ची, बल्कि अपनी बहनों को पलवाने के लिए जाबिर बिन अब्दुल्ला ने, मैं बता नहीं रहा ना, अभी तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना फिर, क्योंकि फौरन रिएक्शन में लेंगे ये हदीस का ये मतलब है, तो वो तो जब होगा ना। तो इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है कि आप खुदा की कसम मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मुझे रिएक्शन कराने में मेरा पलड़ा बहुत भारी होगा, इंशाल्लाह बहुत भारी होगा। हम तो आपको माफ किया हुआ है, हमने छोड़ा हुआ है आपको हमने, और आप हमारे खिलाफ बोलते रहते, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी यूं, ये फलाना यूं, ये ढिमकाना, हम आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हम इस बहस में उलझें। देखो एक वाक्य सुनाता हूं, हमारे एक दोस्त हैं बॉडी बिल्डर हैं, कल मेरी मुलाकात हुई, बड़े लंबे चौड़े ना, तो वो क्या हुआ कि अब वो जो है ना फ्लैट में ऊपर से, सॉरी वो नीचे खड़े हुए ऊपर देख रहे थे अपने किसी दोस्त को, ऊपर फ्लैट में ना, ऊपर एक बारीक सा बंदा खड़ा हुआ था, वो समझ रहा मेरी बीवी को झांक रहा है ये, हालांकि बेचारा शरीफ आदमी है, वो हरकतें करता नहीं है। तो वो हमारे जो दोस्त है ना बिल्डर है, वो नीचे खड़े हुए ऊपर झांक रहे हैं ना ये फ्लैट में, वो ऊपर एक दुबला सा बंदा था, उसको लगा कि मेरी बीवी को देख रहा है, गलतफहमी थी, उसको पहले तहकीक करनी चाहिए थी, आ गया लड़ने के लिए ना, अच्छा ऊपर से उसको नजर नहीं आया कि ये बड़ी चीज है ना ये, तो खैर कहते हैं वो मेरे घर पहुंच गया, नीचे नहीं आया उस वक्त, पहुंच गया होगा घर, वो कह रहे हैं जब दरवाजा बजाया ना मैं घर से बाहर निकला, अब तड़ी नहीं दे तो मुसीबत के आया किस काम के लिए, तो कह रहे हैं वो ना अजीब सा उसकी हालत ना यूं 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 कांपना से शुरू कर दिया उसने, कह रहे मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा यार बिचारे से क्या लड़, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो हम भी बहुत से लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार एक हमने अगर अपने आप को इसमें हमने डाल दिया तो कितने लोग हैं जिन्होंने दाढ़ियां रख ली हैं बयान सुन के, कितने लोग हैं जिनकी स्ट्रेस दूर हो गई है, कितने लोग हैं जो जिना से बच गए हैं, جو نکاح کی طرف چلے گئے. کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے یا ان کے مردوں نے کر لی. میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کیے. پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ. خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں. تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. تبھی جب مجین صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو ہم کچھ اور کام. لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. تو اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ, پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا, ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار, ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا تو پھر میں بہت کچھ ہے. چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا میں آپ کو, وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ میں بعد میں وہ ہے, سب کچھ موجود ہے, وہ میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ابھی دکھا دو نا. پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا, بہت ساری چیزیں. پھر آپ اس سے رجوع. رف الدین والے مسئلے میں جو, پھر تراوی والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے آٹھ رکعت والی گولڈن, میں بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے. یہ آپ کی تحقیق نہیں, حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سنت ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ مسترب سنت ہے, مسترب ہے, یہ استراب ہے اس میں. ٹھیک ہے یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا, لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے, وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں, اپنی نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی بھی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا. اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے, تو لوگ تو الجھ گئے اس میں. ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی, ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں, وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے؟ پھر آپ نے سنت موقعہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا, تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتا چلتا ہے سنت موقعہ نہیں ہے, یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت موقعہ, بس نوافل ہیں پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت موقعہ کیسے, آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, کہا نا میرے خلاف کلپ بنایا کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بہودہ چلتے ہیں. ابھی آپ کا کلپ آیا ہے, آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ولاگرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جو بےہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا. آپ پہ چاہیے تھا ہودا بنائیں یا بےہودا بنائیں, یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بےہودا ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. اس کا مطلب ہودا جو بناتے ہیں, بےہودا کا الٹ ہودا ہی ہوگا نا, ان کی حلال ہے. بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے, تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی, میں کہوں گا دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. بھائی مجھے اس سے کیا پڑتی ہے کہ ہاں ایک جو ہے نا, ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے, ایک اس سے کم درجے کا, لیکن ہیں تو دونوں کیا, ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ولاگرز کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے, تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فوہش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے. دوسرا انہوں نے پی گئے, یعنی اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فوہش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے, حلال ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فوہش بناؤ یا غیر فوہش بناؤ, دونوں کی کیا ہے, حرام ہے. لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو, اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے. جب ایڈورٹائز, اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں, ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے. آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے نا, اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی, تو وہ کون سا جائز ہے؟ کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو, کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی, تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کون سا جائز ہو گیا؟ آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے, دیکھیں حرام تو دونوں ہو گئے. وہاں آپ نے پی گئے اس کو, تو بہت ساری چیزیں ہیں. इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि इंजीनियर साहब से मैं उलझूं, अगर मैं उलझ गया तो फिर इन तमाम बातों के आपको स्टेप बाय स्टेप सियासी मसाइल में भी, आगे सियासत में भी बहुत कुछ, मैं तो सियासी चीजों में बोलता नहीं हूं। अभी कितने इलेक्शन चल रहे हैं, उखाड़ पिछाड़, मैंने तो छोड़ दिया बोलना, क्योंकि भाई हमारा मौजू ये है नहीं। कभी कोई बहुत मसला हो गया तो दो चार लफ्ज बोल देता हूं, वरना नहीं। लेकिन बाद लोग हर चीज में घुस रहे हैं, हर चीज में घुस रहे हैं। तो ऐसे उसमें खवातीन मर्दों की नमाज वाला मसला था, मैंने कहा कोई हदीस लेकर आओ जिसमें हो कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी, उसका भी क्या कर दिया, हदीस पेश नहीं की है आपने, सहाबी का असर पेश किया है। हालांकि हदीस से क्या मुराद होती है, जब अलतलाक, हम तो सहाबी के असर को भी हदीस ही मानते हैं, तो अगर असलाफ के असर को हदीस मानना है तो हमारे पास भी मौजूद है, और फिर आपने जो हदीस पेश की वो भी ज़ईफ है, तो मैं क्लिप चला सकता हूं। आपने जब आपका मसला आता है कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी, सफा मरवा पे दौड़ेंगी नहीं बल्कि चलेंगी, वहां कोई भी हदीस नहीं है, आप इजमाई उम्मत को हुज्जत मान रहे हो। लेकिन जब खवातीन मर्दों की नमाज में फर्क वाला मसला आता है तो वहां भी इजमाई उम्मत है, वहां आप हदीस का मुतालबा कर रहे हो, ये नाइंसाफी है कि नहीं है। अभी इंजीनियर साहब जवाब ना दें आप, क्योंकि आप हो सकता है जवाब दे दें कि हजरत आयशा ने फरमाया कि जी हम चलते हैं तो तुम भी चलो, हजरत आयशा ने जो फरमाया वो सनद ठीक नहीं है, समझते हो कि नहीं समझते हो, और वो भी हदीस मरफू थोड़ी है, वो फरमाया ही को अगर देखना है फिर तो फरमाने वाले बहुत सारे दुनिया में गुजरे हैं, नबी से तो दिखाओ ना। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं भाई, बहुत कौए वाला जो क्लिप पे उन्होंने जो रिएक्ट किया था उसमें भी गड़बड़ की है, कौए वाले क्लिप पे, मैं इस कौए को जायज नहीं समझता, अली तलाक इस कौए को, उसमें डिटेल है, फिर मैंने वो रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया, वो जो मेरे जो मैंने जवाब रिकॉर्ड वो चला नहीं, तो मैंने कहा नहीं चले ना जाए, लेकिन अब होगा तो अब मैं ऐसे नहीं, मैं वो तरीके अख्तियार करूंगा जिसमें आपका और फिर अपना चलाऊंगा। तो मैं अभी तक मैंने किया ये काम, वैसे जवाब दिए लेकिन ऐसा नहीं किया कि इंजीनियर साहब का क्लिप चलाया फिर उसका जवाब, क्लिप चलाया फिर उसका जवाब, तो ये खानदानी असल तरीका होता है। तो ये हम नहीं कर रहे इसलिए कि हम अपने आप को इस बहस में उलझाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आप ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना, तो उसको वैसे ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। काइंडली आप करें जो कुछ कर रहे हैं, जो आपके मानने वाले लोग हैं मानते रहेंगे, मेरा नाम आप काइंडली इस्तेमाल ना करें। अगर मैंने किया है, हो सकता है वो कहें कि इन्होंने किया है, तो वो पहले आपने किया है फिर मैंने किया है। चलो मेरे भाई मुफ्ती साहब को उनका अतिया करना की हैसियत रखता है, बिल्कुल खून का। अच्छा, इसमें भी इंजीनियर साहब ने गड़बड़ की है, उनसे पूछा गया कि जी ये आईवीएफ के जरिए जो मर्द और औरत की वो करते हैं ना पहचान करते हैं, तो फिर मर्द के जन्म रखवाए ये भी जायज है। हालांकि ये तो दुनिया में इलीगल है, कितना बड़ा आपने, यानी इंसान को इख्तियार दे दिया जाए कि वो लड़का पैदा करे या लड़की, इससे तो ये ग्रोथ रेशो की वाट लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या ख्याल है भाई? तो जो मुफ्तियों का काम है भाई, आप उसमें टांग मत अड़ाओ, ये मुफ्तियाने किराम का टॉपिक है, ये आपका टॉपिक नहीं है। तो इसकी इजाजत नहीं है कि आप जेंडर को खुद ही सिलेक्ट करते रहें, इस तरह तो क्या होगा, लड़के ही लड़के हो जाएंगे, लड़कियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए आईवीएफ में रैंडमली जो हो रहा है ना, बस डॉक्टर का काम है वो, अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो ठीक है, आईवीएफ के जरिए बाहर जो दोनों के जरसमों का मिलाप हुआ तो डॉक्टर बस उसको रहम में रख दे, लड़का है लड़की है इससे ये नहीं हो सकता। किसी के छह लड़कियां भी हो गई ना तो भी अल्लाह की कुदरत है, छठी लड़की होगी या लड़का, क्योंकि छह लड़के भी तो हो जाते हैं ना। अगर हम ये कहेंगे जी इसके छह लड़कियां हुई हैं अब वो लड़का पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब जिसके छह लड़के हुए हैं उस पर वाजिब है कि लड़की पैदा करे ताकि रेशो क्या हो, बैलेंस हो। तो जब उसको हम मजबूर नहीं कर रहे तो इसको क्यों मजबूर कर रहे हैं? तो ये अल्लाह ने जो अपने हाथ में रखा हुआ है, यह बोली मैं यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटे देता हूं, ये उसी पे रहने दो। तो रैंडमली जो हो जाए वही है, समझता नहीं है ना बात को। अच्छा।